जय गोपी जन वल्लभो जय गिरिवर धारी जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय हो जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीरवन चारी जय कुंज बिहारी जय हो जय हो जय यमुना तीरवन चारी जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गौर हरि बो हरि बो हरि बो जय प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमदिश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनिताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुमंद्र बलदेव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। श्री भीष्माष्टमी महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरी टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं आज बहुत विशेष दिन है। क्या है? भीष्माष्टमी है। तो भीष्माष्टमी का जो दिन है आप लोग जानते हैं क्या है? भीष्म जी के विषय में आज के दिन उन्होंने देह त्याग किया। आज उनके देह त्याग का दिवस है। तो बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। भीष्म देव ने आज के दिन देह त्याग किया। ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। इस विषय में तो श्रीमद् भागवत का पूरा एक अध्याय है। पूरा अध्याय आप लोगों ने अभी पूरा किया है। नवाध्याय पहले स्कंद का नवाध्याय पूरा किया है ना। तो आज जो है मतलब विशेष चर्चा होनी चाहिए, है ना। तो वो देह त्याग की जो घटना है वो श्रीमद् भागवत में जिस तरह से लिखी है वो हम लोगों ने मतलब सुन ली है, आप लोगों ने सुन ली है। तो महाभारत में तो बहुत विस्तार से इसका वर्णन है। तो ये अनुशासन पर्व में अध्याय संख्या 166 है और 167 और 168, तो ये जो है अनुशासन पर्व में 3 अध्याय हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको जो है मैं आपको सुनाऊं। तो जन्मेजय पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं? वैशंपायन से, वैशंपायन मुनि, वैशंपायन मुनि पूरी महाभारत सुना रहे हैं। कौन है वैशंपायन मुनि? व्यास देव के शिष्य हैं, है? और जन्मेजय को सुना रहे हैं पूरी महाभारत। जन्मेजय कौन है? परीक्षित महाराज के पुत्र हैं जन्मेजय, है ना। तो जन्मेजय ने पूछा, विप्रवर कुरुकुल के धुरंधर वीर भीष्म जी जब वीरों के सोने योग्य बाण सैया पर सो गए, ये वीरों की सैया है, भोगियों की सैया होती है डनलप का जो होता है ना गद्दा, वो भोगियों की सैया है। वीरों की सैया क्या है? बाणों की सैया। वीरों की सोने योग्य बाण सैया पर सोए और पांडव लोग उनकी सेवा में उपस्थित रहने लगे। तब मेरे पूर्व पितामह युधिष्ठिर ने उनके मुख से धर्म का उपदेश सुनकर अपने समस्त संशयों का समाधान कर लेने के पश्चात दान की विधि का श्रवण किया। धर्म अर्थ के विषय में सारे संदेह दूर हो जाने पर और भी कोई कार्य किया हो उसे बताने की कृपा कीजिए। तो वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय सब धर्मों का उपदेश करने के पश्चात जब भीष्म जी चुप हो गए, भीष्म जी चुप हो गए, सब धर्मों का उपदेश करने के बाद भीष्म जी चुप हो गए, तब 2 घड़ी तक सभी लोग जो है चित्र के समान स्तब्ध रहे। 2 घड़ी का मतलब कितना? 48 मिनट। 1 घड़ी 24 घंटे की होती है, 2 घड़ी 48 मिनट तक सब चित्र की तरह चुप। चित्र समझ रहे हैं, जैसे यहाँ पर दिखाई देते हैं तो कोई नहीं बोल रहा तो लगता भाई चित्र हैं क्या, सब चित्र लिखे जैसे बैठे हैं, मतलब कोई ना हिलडुल रहा और ना कुछ बोल रहा तो कैसा लगता है? चित्र जैसा दृश्य हो गया। तो चित्र की तरह सब लोग बैठे हैं चुप, है ना। तो जब चित्र की तरह होते हैं तो फिर मुझे बांटा नहीं जाता, कूपन भी नहीं बांटा जाता उस समय चित्र की तरह है, है? सब लोग जो है स्तब्ध हो गए। अभून मुहूर्तम स्तिमितम सर्वम तंद्राज मंडलम तूष्णीम भूते ततस्तस्मिन् पटे चित्रम एवार्पितम। तो बिल्कुल शांत सब लोग, भीष्म जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा। कितनी देर तक? 2 घड़ी मतलब 48 मिनट। तब 2 घड़ी तक ध्यान करने के पश्चात व्यास देव ने भीष्म जी से इस प्रकार कहा। अब व्यास देव ने कहा, व्यास देव ने कहा कब तक ऐसा चलता रहेगा? व्यास देव बोले भीष्म जी से कि हे राजन, अब युधिष्ठिर संदेह रहित हो चुके हैं और अपना अनुसरण करने वाले समस्त भाइयों राजाओं और श्री कृष्ण के साथ आपकी सेवा में बैठे हैं। अब आप चुप हैं और सब लोग अपना काम बंद किए हुए हैं, आपकी सेवा में बैठे हुए हैं, तो आपकी आज्ञा के बिना कोई हिलेगा नहीं। तो आपको तो अभी बहुत विशेष कुछ कर्तव्य है कि आज्ञा दीजिए, आज्ञा नहीं देंगे तो 48 मिनट से सब बिल्कुल बैठे हुए हैं, जब तक आपकी आज्ञा ना हो कोई हिलेगा नहीं। किसने कहा? व्यास देव ने कहा। किससे कहा? भीष्म जी से कहा। अब अपने हस्तिनापुर जाने की आज्ञा दीजिए। कहाँ जाने की आज्ञा? हस्तिनापुर जाने की आज्ञा दीजिए। व्यास देव कैसे कहने पर गंगा पुत्र भीष्म ने मंत्रियों सहित राजा युधिष्ठिर को जाने की आज्ञा दी। कहाँ जाने की आज्ञा दी? हस्तिनापुर। कहाँ पर हैं अभी? कहाँ पर हैं? कुरुक्षेत्र। अरे मैं पूछ रहा हूँ कहाँ पर हैं तो बताते नहीं। कुरुक्षेत्र है, कोई नहीं बता रहा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि है कहाँ पर है? हैं? कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि है ना सब लोग कि नहीं? वो अलग बात है, हरियाणा में है जहाँ भी हो, कुरुक्षेत्र के है ना।
अभी जो कथा चल रही है
कुरुक्षेत्र में है ना। अब कुरुक्षेत्र हरियाणा में है वो अलग बात है, कुरुक्षेत्र है ना। हरियाणा तो कितना बड़ा है, हरियाणा से क्या पता चलेगा कि कहाँ पर है? हरियाणा बता रहे हैं ना? कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जहाँ वो गिरे थे वहां पर। तो उन्होंने आज्ञा दी, किसको आज्ञा दी? महाराज युधिष्ठिर को आज्ञा दी। मंत्रियों सहित कहाँ जाने की आज्ञा दी? हस्तिनापुर। उस समय भीष्म ने मधुर वाणी में राजा से इस प्रकार कहा, राजन अब तुम पुरी में प्रवेश करो और तुम्हारे मान की आप कोई चिंता नहीं होना चाहिए, आपको कोई चिंता नहीं होना चाहिए। और कहाँ जाओ? हस्तिनापुर जाओ। राजन तुम राजा ये याद ये भांति, किसकी भांति? ये याति राजा ये याद की भांति श्रद्धा और इंद्रिय संयम पूर्वक बहुत से दक्षिणाओं से युक्त भांति भांति के यज्ञ करो। क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहकर देवताओं को तृप्त करो, तुम अवश्य कल्याण प्राप्त करोगे, अतः तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। युधिष्ठिर की मानसिक चिंता थी, इसीलिए भीष्म जी से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। समस्त प्रजाओं को प्रसन्न रखो, उनका उपदेश है, समस्त प्रजाओं को प्रसन्न रखो, मंत्री आदि को सांत्वना दो, सुहृदों का फल और सत्कारों द्वारा यथा योग्य सम्मान करते रहो। रंजयस्व प्रजा सर्वा प्रकृति परेशान तो सुहृदा फल सत्कार अर्चयस्व यथार्हतः। रंजयस्व प्रजा सर्वा, समस्त प्रजा का रंजन करो। राजा का मतलब रंजयति इति राजा, जो प्रजा को आनंद प्रदान करे, है ना। और आनंद रंजन करे केवल इस लोक में नहीं परलोक में भी, राजा की जो है ये ड्यूटी है कि केवल इस लोक का ही नहीं है कि परलोक में जो है सब नरक में जाएं, इस लोक में जो है शराब मांस सब जो है छोड़ दे दें राजा। यहाँ तो यही है शासन का, वेश्यावृत्ति जुआ नशा सब इसके द्वारा प्रजा का रंजन करते हैं राजा, और राजा और प्रजा सब बाद में जाएंगे नरक में, तो वो रंजन नहीं कहलाता है, है ना। रंजयस्व तात, जैसे मंदिर के आसपास के फले हुए वृक्ष पर बहुत से पक्षी आकर बसेरे लेते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे मित्र और हितैषी तुम्हारे आश्रम में रहकर जीवन निर्वाह करें। अनुत्वाम तात जीवन्तु मित्राणि सुहृदस्तथां चैत्यस्थाने स्थितं वृक्षं फलवन्तं इव द्विजाम्। जब सूर्य देव दक्षिणायन से निवृत्त होकर उत्तरायण में आ जाएं, उस समय तुम फिर हमारे पास आ जाना। क्या समझे? अभी दक्षिणायन में है सूर्य, तो मैं शरीर नहीं त्यागूंगा। अभी शरीर सूर्य दक्षिणायन में है, इसलिए मैं शरीर नहीं त्यागूंगा, है ना। जब उत्तरायण में आए सूर्य तब आना मेरे पास, है ना। आगंतव्यम च भवता समये मम पार्थिव विनिवृत्ते करे दिन करे विनिवृत्ते दिन करे प्रवृत्ते चोत्तरायणे। तब बहुत अच्छा कहकर कुंती नंदन युधिष्ठिर पितामह को प्रणाम करके परिवार सहित हस्तिनापुर की ओर चल दिए। राजन उन युधिष्ठिर ने राजा धृतराष्ट्र और पतिव्रता गांधारी देवी को आगे करके समस्त ऋषियों भाइयों श्री कृष्ण नगर और जनपद के लोगों तथा बड़े बूढ़े मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर में प्रवेश किया। कृष्ण भी उनके साथ हैं, है? सेवा में कृष्ण भी सेवा में लगे हुए हैं। राजन हस्तिनापुर में जाने के बाद राजा धृष्टिर ने नगर और जनपद के लोगों का यथोचित सम्मान करके उन्हें अपने अपने घर जाने की आज्ञा दी। राजाओं को और जनपद के लोगों को। इसके बाद जिन स्त्रियों के पति और वीर पुत्र युद्ध में मारे गए, कई स्त्रियों के पुत्र मारे गए और पति भी मारे गए, है ना, उन सबको बहुत सा धन देकर राजा युधिष्ठिर ने धैर्य बंधाया स्त्रियों को। युधिष्ठिर ने राज्याभिषेक हो जाने के पश्चात अपना राज्य पाकर मंत्री आदि समस्त लोगों को अपने अपने पद पर स्थापित करके गुणवान ब्राह्मणों से आशीर्वाद ग्रहण किया। 50 रात्रि तक उस उत्तम नगर में निवास करके युधिष्ठिर को भीष्म जी के बताए हुए समय का स्मरण हुआया। 50 रात्रि तक रहे, कहाँ पर रहे, हस्तिनापुर में रहे, 50 रात में रहे, है ना। अब ये विचार करना होगा कि 50 रात में रहे किस तरह से समय का जो है वो हिसाब है, हम विचार करेंगे अभी आगे चल करके। उन्होंने ये देखकर कि सूर्यदेव दक्षिणायन से निवृत्त हो गए और त्रयण में आ गए तो हस्तिनापुर से बाहर निकले याजकों से घिर करके। याजक मतलब जो पूजा करने वाले हैं, है ना, याजक का मतलब वो भी है जो अंत्येष्टि संस्कार करेंगे, है ना। तो आज के दिन युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर से निकल करके चले हैं कहाँ, भीष्म जी को दर्शन करने के लिए। युधिष्ठिर ने भीष्म जी का दाह संस्कार करने के लिए पहले से ही घी, माला, गंध, रेशमी वस्त्र, चंदन, अगुरु, काला चंदन और मालाएं, श्रेष्ठ मालाएं, नाना प्रकार के रत्न भिजवा दिए थे, पहले से भिजवा दिए थे सामान। घृतम माल्यम जगन्धांशा छोमाणी चा युधिष्ठिर चंदना गुरु मुख्यानि तथा काली कान्यपि प्रस्थाप पूर्वम कौन्तेयो भीष्म संस्करणाय वे, भीष्म संस्करणाय वे माल्यानि च वरारहाणि रत्नानि विविधानि च। बुद्धिमान युधिष्ठिर, राजा धृतराष्ट्र, गांधारी देवी, कौन कौन है, युधिष्ठिर है और कौन है, राजा धृतराष्ट्र हैं और गांधारी देवी, माता कुंती और अपने चारों भाइयों को आगे करके पीछे से भगवान श्री कृष्ण और विदुर जी, युधिष्ठिर और सात्यकी चल रहे हैं। पीछे से भगवान कृष्ण, विदुर, युधिष्ठिर और सात्यकी को साथ लिए चल रहे हैं। धृतराष्ट्रम पुरस्कृत्य गांधारीं च यशस्विनीं मातरं च प्रथां धीमान भ्रातृं च पुरुषर्षभान जनार्दनेनानुगतो विदुरेण च धीमता युत्सुना च कौरव्यो युधानेन वा विभुम। पीछे हैं कौन, जनार्दन पीछे हैं, है? आगे किसको रखा है, धृतराष्ट्र को, गांधारी को, माता कुंती को, है? और भाइयों को आगे रखा है और बीच में स्वयं है और पीछे किसको रखा है, जनार्दन भगवान कृष्ण को रखा है पीछे, हैं क्यों, ये सेवक हैं वे, हैं पीछे से रक्षा करें आगे से भी रक्षा करें और आगे उनको भी रखना, जिनकी रक्षा करनी है उनको भी आगे रखना, धृतराष्ट्र हैं, कुंती हैं, गांधर, उनको भी आगे रखा है, अपने चारों भाइयों को भी रक्षा के लिए आगे रखा है और पीछे भगवान कृष्ण हैं, विदुर हैं और सब जो है युधिष्ठिर सात्यकी ये रक्षा के लिए रक्षक हैं, हाँ, और महाराज युधिष्ठिर सुरक्षित हैं इनके द्वारा, इस तरह से चल रहे हैं। ये महा तेजस्वी राजा विशाल राजाओं के उपकरण और वैभव के भारी ठाट बाट से संपन्न थे, उनकी स्तुति की जा रही थी और भीष्म जी के द्वारा स्थापित की हुई अग्नियों को आगे रखकर स्वयं पीछे पीछे चल रहे थे। वे इंद्र की भांति अपनी राजधानी से बाहर निकले और कुरुक्षेत्र में भीष्म जी के पास जा पहुंचे। उस समय वहां पराशर नंदन बुद्धिमान व्यास, देवर्षि नारद, असित देवल मुनि उनके पास बैठे थे। देखो कितनी महत्वपूर्ण घटना है, हैं? पहले से हैं, कौन है, व्यास देव हैं, नारद जी हैं और असित और देवल ऋषि। पाश्यमानं व्यासेन पाराशर्येण धीमता नारदेन च राजर्षे देवलेन आसितेन च। अच्छा ये सब नाम जो है उस गीता में आते हैं ना, आहुस्तोम ऋषिया सर्वे देवर्षे नारद तथा असितो देव लो व्यासा स्वयं चैव प्रवेश में, वो इस नाम इसमें भी हैं इस श्लोक में आपको जो है बोलते हैं देवर्षि नारद और व्यास असित देवल, तो इसमें भी वही नाम है सब। नाना देशों से आए हुए राजा जो मरने से बच गए थे, रक्षक बनकर चारों ओर से महात्मा भीष्म की रक्षा करते थे, वो कहीं नहीं गए, सब वहीं पर ही हैं। 50 दिन के लिए युधिष्ठिर महाराज चले गए ना, तो 50 दिन से वो रक्षा कर रहे हैं उनकी, भीष्म देव की रक्षा करना जरूरी है। राजा युधिष्ठिर दूर से ही बाण से पर सोए हुए भीष्म जी को देखकर भाइयों से रथ से उतर पड़े। ये शिष्टाचार, जहां दिखाई दिया बाण से पर वहीं से रथ से उतर पड़े, फिर रथ पर नहीं बैठे। रथ पर तो चलना था, आवश्यक था रथ में चलना, कि बहुत दूर है हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र है ना, लेकिन जैसे जहाँ जितनी दूर से दिखाई दिया, अब जैसे धुंध है तो धुंध में तो बहुत पास से भी नहीं दिखाई पड़ता है बड़ा मुश्किल था कि किस रास्ते से मोड़ना है हमको इस धुंध में, है ना। लेकिन धुंध नहीं थी उस समय, धुंध नहीं रही होगी जो भी हो, तो जितनी दूर से दिखाई दिए उतनी दूर से युधिष्ठिर रथ से उतर पड़े, भाइयों से रथ से उतर पड़े। शयानम वीर सैने दर्श निपतिष्ठत तथो रथादीर्य भ्रातृवी सह धर्मराट। कुंती कुमार ने सबसे पहले पितामह को प्रणाम किया, उसके बाद व्यास आदि ब्राह्मणों को मस्तक झुकाया, फिर उन सबने भी उनका अभिनंदन किया। पहले भीष्म जी को प्रणाम किया, फिर व्यास आदि सब लोग। तब धर्मराज युधिष्ठिर ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी ऋतुजों भाइयों और ऋषियों से घिरे बाण से या पर सोए हुए भीष्म जी से भाइयों से इस प्रकार बोले। अब बोले युधिष्ठिर महाराज, क्या बोले? गंगा नंदन महाबाहु, मैं युधिष्ठिर आपकी सेवा में आ गया हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ, यदि आपको मेरी बात सुनाई देती हो तो आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ। क्या यदि आपको मेरी बात सुनाई देती हो, आंखें बंद है ना उनकी। युधिष्ठिर हम नृपते नमस्ते जहानवी सुत है सुनो से चेन महाबाहो द्रोही किम करवाणी थी। हे प्रभु, आपकी अग्नियों और आचार्यों ब्राह्मणों और ऋतुजों को साथ लेकर मैं अपने भाइयों के साथ ठीक समय पर आ पहुंचा हूं। प्राप्तोस्मि समय राजन अग्निना दाय ते विभो आचार्यान ब्राह्मणाश्चैव ऋतुजो भ्रातरश्च मे। आपके पुत्र महातेजस्वी राजा धृतराष्ट्र भी अपने मंत्रियों के साथ उपस्थित हैं। भीष्म जी ऐसे लेटे हैं ना, तो सबको देख भी नहीं सकते हैं, सबको देख भी नहीं सकते। अरे वो नींद आ रही है, ठीक से विश्राम नहीं किया तो नींद आ रही है, तो वो देख नहीं सकते ना, है ना। बल्कि 5 बाणों का उनका तकिया भी जो बनाया गया है, तो उससे भी पता नहीं इधर से बाण मारे हैं तो पूरे आर पार हो गए हैं बाण, कैसे 5 बाणों का तकिया भी अर्जुन ने बनाया था उनको, है ना। तो ना उनका वो सिर भी नहीं हिला सकते देखने के लिए, है ना। तो ऐसी हालत में युधिष्ठिर बता रहे हैं कि आपके पुत्र धृतराष्ट्र भी यहाँ पर मौजूद हैं और महापराक्रमी भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ पधाए हुए हैं। पुत्रश्च ते महातेजा धृतराष्ट्रो जनेश्वरः उपस्थिता साहा मात्यो वासुदेवश्च वीर्यवान। युद्ध में मरने से बचे हुए समस्त राजा और कुरु जंगल देश की प्रजा भी उपस्थित है, आप आंखें खोलिए और इन सबको देखिए। आपके कथनानुसार इस समय के लिए जो कुछ संग्रह करना आवश्यक था वो सब जुटा कर मैंने यहाँ पहुंचा दिया है, सभी उपयोगी वस्तुओं का प्रबंध कर लिया गया है। मतलब इच्छा मृत्यु है, तो अब आपकी इच्छा है शरीर छोड़ने की, तो सब तैयारी है। तो ये कह नहीं रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब यही है, शिष्टाचार के अनुसार जो है ऐसा नहीं बोला जाता है ना, लेकिन कह रहे हैं सब तैयारी हो चुकी है। वैश्यम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय परम बुद्धिमान युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर गंगा नंदन भीष्म जी ने आंखें खोलकर अपने को सब ओर से घेर कर खड़े हुए संपूर्ण भरत वंशियों को देखा। फिर प्रवचन कुशल भीष्म ने युधिष्ठिर की विशाल भुजा हाथ में लेकर मेघ के समान गंभीर वाणी में ये वचन कहा। कुंदी नंदन, सौभाग्य की बात है कि तुम मंत्रियों सहित यहां आ गए। सूर्यदेव अब दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर लौट चुके हैं। दक्षिणायन से उत्तरायण, इन तीखे बाणों की सैया पर शयन करते हुए आज मुझे 58 दिन हो गए हैं। कितने दिन? 58 दिन हो गए हैं, किंतु ये दिन मेरे लिए 100 वर्षों के समान बीते हैं। अष्टपंचाशतम रात्रिः श्यानस्याद्य मेघता सरेषु निशिताग्रेषु यथा वर्षशतम यथा तथा। युधिष्ठिर, इस समय माघ का महीना प्राप्त हुआ है और इसका शुक्ल पक्ष चल रहा है, जिसका एक भाग बीत चुका है। माघोयम समनु प्राप्तो मासा सौम्यो युधिष्ठिर त्रिभाग शेषा पक्षोयम शुक्लो भवितुम अर्हति। तो इस बात को समझना है कि माघ शुक्ला अष्टमी, ये जो है माघ शुक्ला अष्टमी है, जबकि भीष्म ने अपना देह त्याग किया था। तो जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था तो सूर्यदेव दक्षिणायन में थे। दक्षिणायन से उत्तरायण में जब सूर्यदेव आते हैं तो एक दिन आता है विशेष, वो कौन सा दिन है? दक्षिणायन से उत्तरायण। सूर्य का जो है दक्षिणायन 6 महीने का होता है, उत्तरायण 6 महीने का होता है ना। तो दक्षिणायन से उत्तरायण जो मतलब सूर्य जो होते हैं, तो कब से किस दिन होता है वो? मकर संक्रांति, 14 जनवरी या 15 जनवरी जो भी हो, मकर संक्रांति। तो उत्तरायण में शरीर छोड़ते हैं। तो गीता में भगवान बताते हैं कि यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे, कि जिसको प्राप्त करने के लिए जो है योगी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो पद मैं तुम्हें संक्षेप से बताऊंगा। तो संक्षेप में गीता में भगवान ने वो भी बात बताई। संक्षेप में क्यों बताई? क्योंकि सबके लिए नहीं है नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनना, है ना। तो फिर भगवान कहते हैं अग्निर्ज्योति रहा शुक्ला सन्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म विदोजना। कि वो समय अग्नि का होना चाहिए, ज्योति का होना चाहिए, दिन का होना चाहिए, शुक्ल पक्ष के 15 दिन का समय होना चाहिए और उत्तरायण के 6 महीने का समय होना चाहिए, है ना। तो उत्तरायण के 6 महीने का समय तो मतलब आ गया मकर संक्रांति के दिन से, है ना। लेकिन उस समय शरीर क्यों नहीं छोड़ा उन्होंने भीष्मदेव ने? क्योंकि उस समय कृष्ण पक्ष चल रहा था, माघ का जो है कृष्ण पक्ष चल रहा था, है ना। तो माघ का कृष्ण पक्ष जब समाप्त हो गया तो फिर शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, ये शुक्ल पक्ष का मध्य का समय है। तो वो भी जो है शुक्ल पक्ष का मध्य का दिन समय जो है उन्होंने चुना। तो ये मतलब जो प्राणों को जो है अपने बस में कर लेते हैं तो वो प्राण त्याग करने का समय निश्चित करते हैं। कि भीष्मदेव जब सरसैया पर गिरे थे तो महाभारत का 10वां दिन था, वो महाभारत युद्ध का 10वां दिन था, है ना। तो देवताओं ने जो है मतलब बहुत हाहाकार किया कि भीष्मदेव आप ऐसे समय में क्यों शरीर छोड़ रहे हैं अपना, योगी लोग ऐसे समय में शरीर नहीं छोड़ते हैं। तो भीष्मदेव ने कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा अपना, जब उत्तरायण का समय आएगा तब मैं शरीर छोड़ूंगा, है ना। तो ये भीष्मदेव बता रहे 58 दिन हो गए हैं। 58 दिन जो है आप गणना कर सकते हैं 58 दिन कैसे हुए। 58 दिन जो भीष्म जी बता रहे हैं वो उस दिन से शुरू कर रहे हैं जिस दिन से युद्ध शुरू हुआ था। आप समझ रहे हैं, जिस दिन से युद्ध शुरू हुआ था उस दिन से उनके शरीर में बाण लगना शुरू हो गए थे और बहुत से बाण आर पार हो जाते थे। लेकिन ऐसे वीर पुरुष है ना युद्ध करते रहे ना। तो बाणों की सैया पर तो वो सोई रहे हैं, मतलब बहुत उतने समय से सोई रहे हैं बाणों की सैया पर ना। अब बाण आर बार हो जाते हैं तो करवट से सोते हैं, ऐसे नहीं सोते, लेकिन फिर भी बाण तो शरीर में आर पार हो ही रहे हैं। तो ये जो है अग्रहायण शुक्ल एकादशी, जो मोक्षदा एकादशी होती है, जिस दिन गीता का भगवान ने उपदेश दिया वही दिन था पहला महाभारत युद्ध का पहला दिन था, ठीक है ना। तो वो अग्रहायण शुक्ल एकादशी है ना, तो उसमें एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक 5 दिन हो गए, ठीक है ना। तो अग्रहण पूर्णिमा ये 5 दिन तो वो हो गए, अग्रहण के बाद फिर पौष का महीना आता, तो पूरा पौष का महीना 30 दिन ना, तो कितना हो गया 30 और 5 35 है ना 35। इसके बाद फिर अग्रहायण के कृष्ण पक्ष के 15 दिन कितना हुआ 50 हो गया, और फिर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 8 दिन तो कितना हो गया 58 दिन। इस तरह से 58 दिन। तो उस दिन से तो मैंने भी मतलब पहले विचार किया था कि भाई 10वें दिन अगर उन्होंने उनकी सरसज्जा हुई तो 10वें दिन से तो 58 दिन नहीं होते पूरे, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि उस दिन से पूरे होते हैं तो फिर मुझे लगा कि भाई 58 दिन जो बता रहे हैं वो उस दिन से गणना कर रहे हैं अपने बाणों की, तो शरीर में बाण तो चुभे हुए हैं, है ना, तो इस तरह से 58 दिन कर रहे हैं। अग्रहण के शुक्ल पक्ष की एकादशी को दिन प्रारंभ हुआ, फिर 10वें दिन भीष्म जी की सरसैया हुई, 10वें दिन ये पौष कृष्ण पंचमी, पौष के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि थी, ठीक है ना। तो उसने पूरा विचार किया है भीष्म ने, 58 दिन क्यों, मतलब उन्होंने शरीर 58 दिन तक उन्होंने क्यों शरीर धारण किया बाणों की सैया पर, तो उसमें पूरा विचार वो भगवद गीता के अनुसार मिलता है, ये पूरा विचार उन्होंने किया है, गीता में भगवान ने जैसे बताया है, ना। तो युधिष्ठिर से ऐसा कहकर गंगा नंदन भीष्म ने धृतराष्ट्र को पुकार कर उनसे ये वचन कहा। अब धृतराष्ट्र से कहा क्या कहा, राजन तुम धर्म को अच्छी तरह जानते हो, अब तुम्हारे मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, तुमने अनेक शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले बहुत से विद्वान ब्राह्मणों की सेवा की है, उनसे सत्संग का लाभ उठाया है। कौन कह रहे हैं है? कौन कह रहे हैं, भीष्म देव कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, तुम चारों वेदों संपूर्ण शास्त्रों और धर्मों का रहस्य पूर्ण रूप से जानते हो समझते हो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, जो कुछ हुआ है वो अवश्य होना था, तुमने व्यास जी से देवताओं का रहस्य भी सुन लिया है, कि पहले से निश्चित था ये जो होना था निश्चित था, ये पांडव जैसे राजा पांडव के पुत्र हैं वैसे तुम्हारे भी हैं, धर्म की दृष्टि से तुम्हारे पुत्र हैं, धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे हैं, कि धृतराष्ट्र ने जो है इनके साथ में पक्षपात किया था ना, धृतराष्ट्र ने बहुत पक्षपात किया था, है ना, तो समझा रहे हैं, ये सदा गुरुजनों की सेवा में लगे रहते हैं, तुम धर्म स्थित रहकर अपने पुत्रों के समान ही इनका पालन करो, 5 पांडवों का तुम पालन करो, अपने पुत्रों की तरह पालन करो। धर्मा युधिष्ठिर का हृदय बहुत शुद्ध है, युधिष्ठिर का हृदय बहुत शुद्ध है, ये तुम्हारे पुत्र दुर्योधन की तरह नहीं हो, तुमसे तुम्हारे साथ ऐसा न्याय नहीं करेंगे जैसा तुमने इनके साथ किया, कि नहीं तुमने इनके साथ कितना न्याय किया है, और इनको मार डालने की योजनाएं बनाई, और तुम्हारे कारण कि वन में भी कष्ट भोगते रहे, लेकिन ये ऐसे नहीं है कि तुम्हारे साथ ऐसा गलत व्यवहार करेंगे, इनका हृदय बहुत शुद्ध है, ये सदा तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहेंगे, मैं जानता हूँ इनका स्वभाव बहुत कोमल है और ये गुरुजनों के प्रति बहुत भक्ति रखते हैं। युधिष्ठिर तुम्हारे पुत्र बड़े दुरात्मा थे, क्रोधी थे, लोभी थे, ईर्ष्यालु थे और दुराचारी थे तुम्हारे पुत्र, अतः उनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अवपुत्र दुरात्मान क्रोध लोभ परायण ईर्ष्या विभूता दुर्वृत्तास तान न सोच तुम अर्हसी। वैष्णवपायन जी कहते हैं धृतराष्ट्र से ऐसा वचन कहकर भीष्म ने महाबाहु भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा। अब कृष्ण से बोल रहे हैं अंतिम अंतिम वचन किससे बोल रहे हैं? कृष्ण से बोल रहे हैं। भीष्म जी बोले भगवान देव देवेश्वर देवता और असुर सभी आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। अपने तीन पगों से तीनों लोगों को नापने वाले और संघ चक्र गदा धारण करने वाले नारायण देव आपको नमस्कार है। भगवान देव देवेश सुरासुर नमस्कृत त्रिविक्रम नमस्तोभ्यम संघ चक्र गदाधर। आप वासुदेव हिरण्यात्मा पुरुष सविता विराट अनुरूप जीवात्मा और सनातन परमात्मा है। वासुदेव हिरण्यात्मा पुरुषा सविता विराट जीव भूतो अनुरूपस्त्वं परमात्मा सनातना। कमलयन श्री कृष्ण पुरुषोत्तम वैकुंठ आप मेरा उद्धार कीजिए, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। त्रायस्व पुंडरीकाक्ष पुरुषोत्तम नित्य सहा अनुजाना ही माम कृष्ण वैकुंठ पुरुषोत्तम। प्रभु आप ही जिनके परम आश्रय हैं उन पांडवों की आप सदा रक्षा कीजिए। देखो पांडवों की कितनी चिंता है भीष्म जी को, आप ही इनके आश्रय हैं, आप हमेशा इनकी रक्षा कीजिए। मैंने दुर्बुद्धि और मंद दुर्योधन से कहा था कि जहां श्री कृष्ण है वहां धर्म है और जहां धर्म है उसी पक्ष की जय होगी, इसलिए बेटा दुर्योधन तुम भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पांडवों के साथ संधि कर लो। मैंने कहा था किससे? दुर्योधन से, लेकिन वो दुर्बुद्धि है, मंद मंदमति। इस प्रकार बार बार कहने पर भी उस मंद बुद्धि मूढ़ ने मेरी वो बात नहीं मानी और सारी पृथ्वी के वीरों का नाश कराकर अंत में स्वयं भी काल के गाल में चला गया। रक्षा चते पांडवेया भवान ये साम परायणम उक्तवान अस्मि दुर्बुद्धिम मंदम दुर्योधनम तदा यथा कृष्ण ततो धर्मः यतो धर्मस्ततो जयः वासुदेवेन तीर्थेन पुत्र संसाम्य पांडव संधा संधानस्य पराकाल तवेति च पुनः पुनः न च मे तन्मचो मूढ़ा कृतवान् सा सुमन्दधि घाते त्वे पृथ्वीं तदा सा निधनम गतः। देव मैं आपको जानता हूँ, आप वही पुरातन ऋषि नारायण हैं जो नर के साथ चिरकाल तक बद्र का आश्रम में निवास कर दे रहे। कौन है आप? नारायण ऋषि नर के। त्वाम तु जानाम्यहं देवं पुराणं ऋषिसत्तमं नरेण सहितं देव बदर्यां सुचिरोषितं। देवर्षि नारद और महातपस्वी व्यास ने भी मुझसे कहा था कि श्री कृष्ण और अर्जुन साक्षात भगवान नर नारायण और नर हैं जो मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। तथा मे नारदः प्राह व्यासश्च सुमहातपां नर नारायणावेतो संभूतो मनुजे स्तुति। श्री कृष्ण अब आज्ञा दीजिए, अब आप आज्ञा दीजिए, मैं शरीर का परित्याग करूंगा, आपकी आज्ञा मिलने पर मुझे परम गति की प्राप्ति होगी। समाम त्वं मनुजानी ही कृष्ण मोक्षे कलेवरम त्वया हम समनुज्ञातो गच्छेयम् परमां गतिम्। भगवान श्री कृष्ण क्या बोले सुन रहे सब लोग? सो रहे हैं? हरि बोल, आंखें खोलिए। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? भीष्म जी से कह रहे हैं। पृथ्वी पालक महा तेजस्वी भीष्म, मैं आपको हर्ष पूर्वक आज्ञा देता हूं, आप वसुलोक को जाइए, इस लोक में आपके द्वारा अनुमात्र भी पाप नहीं हुआ है। अनुजाना में भीष्म त्वाम वसून प्राप्नु ही पार्थिव नतेस्ति विजनम किंचन लोके महाद्युति। राजर्षि आप दूसरे मार्कंडेय के समान पितृ भक्त हैं, इसलिए मृत्यु विनीत दासी के समान आपके वश में हो गई है। मृत्यु आपके पितृभक्तो सिराजर से मार्कंडे एवापर तेन मृत्यु स्तव्य से स्थितो भृत्य वानदः। पितृभक्त होना बहुत अच्छा है, अगर पिता शुद्ध भक्त हो। है ना, तो उनके पिता शांतनु जो है भगवान के सिद्ध भक्त हैं, इसलिए पिता की भक्ति का जो है प्रशंसा है, प्रशंसित है। लेकिन अगर पिता अगर शुद्ध भक्त नहीं हो तो फिर पिता की भक्ति जाने करने से भी आप नरक में जाएंगे, पिता नरक में जाएगा तो पुत्र भी नरक में जाएगा, है ना। यहाँ पर पितृभक्ति का जो कारण है वो ये है ना कि पिता शुद्ध भक्त हैं। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मे जय भगवान के ऐसा कहने पर गंगा नंदन भीष्म ने पांडव और धृतराष्ट्र आदि सभी सुहृदों से कहा, अब मैं प्राणों का परित्याग करना चाहता हूं, तुम सब लोग इसके लिए मुझे आज्ञा दो। देखो कितना शिष्टाचार है, कह रहे हैं अब आप लोग सब आज्ञा दीजिए मुझे, है ना, आज्ञा मांग रहे हैं सब लोग, तुम सब लोग मुझे आज्ञा दो है। तुम्हें सदा सत्य धर्म के पालन का प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि सत्य ही सबसे बड़ा बल है। प्राणान उत्सृष्टुम इच्छामि तत्राणो ज्ञातुम अर्हत है सत्येषु यत तव्यम् वा सत्यम हि परमं बलम्। भरतवंशियों तुम लोगों को सबके साथ कोमलता का बर्ताव करना, तुम लोगों को सबके साथ कोमलता का बर्ताव करना, सदा अपने मन और इंद्रियों को अपने बस में रखना, और ब्राह्मण भक्त धर्मनिष्ठ और तपस्वी होना चाहिए। आन संशय परैर्भाव्यम सदैव नेतात्म भी ब्रह्मण्यर्धर्मशीलश्चा तपो नित्यश्च भारतम्। ऐसा कहकर भीष्म जी ने अपने सब सुहृदों को गले लगाया, युधिष्ठिर से पुनः इस प्रकार कहा, युधिष्ठिर तुम्हें सामान्यता सभी ब्राह्मणों की विशेषतः विद्वानों की और आचार्य और ऋतुओं की सदा ही पूजा करनी चाहिए। समस्त कौरवों से ऐसा कहकर शांतनु नंदन भीष्म जी दो घड़े तक चुपचाप पड़े रहे। ऐसा कहकर के कितनी देर तक चुपचाप रहे? दो घड़े तक चुपचाप पड़े रहे। तब वे मन सहित प्राणवायु को क्रमशः भिन्न भिन्न धारणाओं में स्थापित करने लगे। इस तरह यौगिक क्रिया द्वारा रोके हुए भीष्म जी के प्राण क्रमशः ऊपर उठने लगे। अब सुनिए बड़े ध्यान से, बहुत आश्चर्य की घटना है ये। अब प्राणों को ऊपर उठा रहे हैं। उस समय वहां एकत्र हुए सभी संत महात्माओं के बीच एक बड़े आश्चर्य की घटना घटी। व्यास आदि सब महर्षियों ने देखा कि योग युक्त हुए भीष्म के प्राण उनके जिस जिस अंग को त्याग कर ऊपर उठते थे उस अंग के बाण अपने आप निकल जाते और उनका घाव भर जाता था। क्या आश्चर्य, उनके शरीर में इतने बाण थे कि एक अंगुल की भी जगह नहीं थी जहां बाण ना आर पार हुआ हो। उनके शरीर में इतने बाण थे, क्या आश्चर्य है। 58 दिनों से उनके शरीर में बाण, और कुछ बाण तो अर्जुन के जो बाण थे वो 10 घटा दो तो 48 दिन से बाण आर पार हैं, है ना। और जैसे प्राण ऊपर उठ रहे हैं तो बाण निकलते जा रहे हैं और घाव भरते जा रहे हैं, क्या आश्चर्य है। देखिए ये आज के दिन की ये घटना है। इदम् आश्चर्यम् आसीत् च मध्ये तेषां महात्मनां सहित ऋषिभिः सर्वैः तदा व्यासादिभिः प्रभो यन् यन् मुञ्चति गात्रं हि स शान्तनु सुतस्तदा तत्तन्विशल्यं भवति योगियुक्तस्य तस्य। इस प्रकार सबके देखते देखते भीष्म जी का शरीर क्षण भर में बाणों से रहित हो गया। एक क्षण, एक क्षण का मतलब 4 मिनट, कितना 4 मिनट में पूरा शरीर बाणों से रहित हो गया और घाव भी भर गए। ऐसा आश्चर्य कभी कोई सोच सकता है? सोच भी नहीं सकता है, ऐसा आश्चर्य हुआ। छड़े न प्रेक्षिताम तेषाम विशल्यासो भवत्तदा तन्दृष्ट्वा विस्मिता सर्वे वासुदेव है पुरोगमा सहतैर मुनि भी सर्वे तदा व्यासादिभिर् नृप। ये देखकर व्यास आदि समस्त मुनियों सहित भगवान श्री कृष्ण को बड़ा विस्मय हुआ। कृष्ण भी विस्मय कर रहे हैं, विस्मित हो रहे हैं, तो फिर किसको विस्मित नहीं होना चाहिए? भगवान कृष्ण स्वयं, उनकी तो कृपा है लेकिन मनुष्य लीला कर रहे हैं, विस्मित होना ये प्रशंसा की बात है ना। तो भीष्म देव के प्रति प्रशंसा की भावना में भगवान कृष्ण भी विस्मित हो रहे हैं, क्या सा आश्चर्य है। भीष्म जी ने अपने देह के सभी द्वारों को बंद करके प्राणों को सब ओर से रोक लिया था। तो भगवान कहते हैं ना गीता में, भगवान गीता में कहते हैं कि मूर्ध्याधाय आत्मनः प्राणम आस्तो योग धारणम, है ना। तो योग धारणा मतलब पहले कंठ तक प्राणों को लाते हैं, फिर ये सब द्वार रोक लेते हैं, मुंह और दो नासिका, सात द्वार यहाँ हैं, सात द्वारों से प्राण निकलते हैं किसी के, लेकिन सातों द्वारों को रोक करके प्राण को यहाँ आज्ञा चक्र में लाते हैं, उसको कुंडलिनी बोला जाता है, और फिर आज्ञा चक्र से फिर सहस्त्रार्थ यहाँ पर लाते हैं, और यहाँ से फिर प्राण को छोड़ते हैं, है ना। तो वो प्राण जो है, जो पापियों के प्राण तो मलमूत्र के द्वार से निकलते हैं, तो मल द्वार फट जाता है या मूत्र द्वार फट जाता है उनका, पापियों के प्राण जब यमदूत आते हैं तो मल का द्वार या मूत्र के द्वार से प्राण छूटते हैं पापी के, और वो भयभीत होकर के मल त्याग देता है, मूत्र त्याग देता है सैया में, यमदूत उसको नरक में ले जाते हैं। लेकिन जो पुण्यात्मा होते हैं उनके प्राण जो है या तो मुँह से निकलते हैं तो मुँह खुला हो जाता है, आँखें से निकलते हैं तो आँख खुली देती हैं, नासिका से निकलते हैं तो पता नहीं चलता वो तो नासिका का द्वार खुला है या कान के द्वार से। लेकिन वो जो योगी होते हैं वो प्राणों को कहाँ से छोड़ते हैं, यहाँ से निकलते हैं, तो यहाँ पर लाए प्राण, इसलिए उनका मस्तक फोड़कर आकाश में चला गया। सन्निरुद्धस्तु तेनात्मा सर्वेषु आयतनेषु च जगाम भित्वा मूर्धानम देवम अभ्युत्पात हा। उस समय देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और साथ ही दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। सिद्धों और ब्रह्मर्षियों को बड़ा हर्ष हुआ और भीष्म जी को साधुवाद देने लगे। भीष्म जी का प्राण उनके ब्रह्मरंध्र से निकलकर बड़ी भारी उल्का की भांति आकाश में उड़ा। कैसे उल्का, उल्का आकाश से नीचे आती है ना, यानी ये आकाश से नीचे से ऊपर जा रही है, उल्का की भांति आकाश में उड़ा और क्षण भर में अंतर्धान हो गया। एक क्षण मतलब चार मिनट, चार मिनट में माहौल के वेच भीष्मस्य मूर्धते सांजनाधिप निसृत्य आकाश मावेश क्षणेनांतरधीयते। राजन इस प्रकार भरत वंश का भार वहन करने वाले राजा भीष्म काल के अधीन हुए। तब बहुत से काष्ठ और नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्य लेकर महात्मा पांडव विदुर और युत्सु ने चिता तैयार की और से सब लोग अलग खड़े होकर देखते रहे। राजा युधिष्ठिर और परम बुद्धिमान विदुर इन दोनों ने रेशमी वस्त्रों मालाओं से गंगा पुत्र भीष्म को आच्छादित किया, चिता पर सुलाया। उस समय युत्सु ने उनके ऊपर उत्तम छत्र लगाया। भीमसेन और अर्जुन श्वेत चमर और वेदन डुलाने लगे चिता पर रख करके। नकुल सहदेव ने पगड़ी हाथ में लेकर भीष्म जी के मस्तक पर रखी और रैनिवास की स्त्रियां ताड़ के पंखे हाथ में लेकर भीष्म जी के सब को सब ओर से हवा करने लगीं। तब पांडवों ने विधि पूर्वक भीष्म का पितृमेध कर्म किया। अग्नि में बहुत सी आहुतियां दी गईं। साम गान करने वाले ब्राह्मण साम मंत्रों का गान करने लगे। धृतराष्ट्र आदि ने चंदन की लकड़ी, काले चंदन और सुगंधित वस्तुओं से भीष्म के शरीर को आच्छादित करके उनकी चिता में आग लगाई। फिर धृतराष्ट्र आदि सब कौरवों ने इस जलती हुई चिता की प्रदक्षिणा की। इस प्रकार भीष्म जी का दाह संस्कार करके समस्त कौरव अपनी स्त्रियों को साथ लेकर ऋषि मुनियों से सेवित परम पवित्र गंगा जी के तट पर आए। उनके साथ महर्षि व्यास, देवर्षि नारद, अश्रित देवल, भगवान श्री कृष्ण और नगर निवासी मनुष्य भी पधारे थे। अच्छा, इनके ही नाम आते हैं बार बार, व्यास देव, नारद जी, अश्रित देवल, वही नाम आते हैं ना गीता में, है ना, यही नाम आते। वहां पहुंचकर उन क्षत्रियों ने और अन्य सब लोगों ने विधि पूर्वक भीष्म देव को जलांजलि दी। उस समय कौरवों द्वारा अपने पुत्र भीष्म को जलांजलि देने का कार्य पूरा होने पर भगवती गंगा जल के ऊपर प्रकट हुई। गंगा जल से जलांजलि दे रहे हैं तो गंगा जी प्रकट हुई और शोक से बेहबल हो रोती हुई विलाप करती हुई कौरवों से कहने लगी। ये एक आश्चर्य है, वो माता है अपने पुत्र का जो है जलांजलि कार्य देख करके माता को कितना दुख होगा। तो गंगा देवी जो है विलाप कर रही हैं और कौरवों से कहने लगी, निष्पाप पुत्रगण, मैं जो कहती हूँ उस बात को यथार्थ रूप से सुनो। भीष्म सदाचार से संपन्न थे, उत्तम बुद्धि और श्रेष्ठ कुल से संपन्न थे। नबोधते यथावृत्तम उच्चमानम मया नघाम राजवृत्तेन संपन्ना प्रज्ञा भीजनेन चाम। भीष्म कुरुकुल वृद्ध पुरुषों के सत्कार करने वाले और अपने पिता के बड़े भक्त थे। हाय, पूर्व काल में परशुराम भी अपने दिव्य अस्त्रों द्वारा जिस मेरे महापराक्रमी पुत्र को पराजित ना कर सके, वो इस समय शिखंडी के हाथ से मारा गया। ये कितने कष्ट की बात है। गंगा जी कह रहे हैं शिखंडी के हाथ से मारा गया। शिखंडी तो कुछ भी नहीं है, परशुराम जी भी जिनको परास्त नहीं कर पाए, है ना, कितने दुख की बात है। राजाओ, अवश्य मेरा हृदय पत्थर और लोहे का बना हुआ है। कौन कह रहे हैं? गंगा जी कह रहे हैं। तभी तो अपने प्रिय पुत्र को जीवित ना देखकर भी आज ये फट नहीं जाता। अस्मि सारमयम् नूनम् हृदयम् मम पार्थिवाम् अपश्यन्त्या प्रियं पुत्रम् यन्न दीर्यति मे देवम्। काशीपुरी के स्वयंवर में समस्त राजाओं के एकत्र हुए, समस्त राजा एकत्र हुए, किंतु भीष्म ने एक रथ की सहायता से उन सबको जीतकर काशीराज की तीनों कन्याओं का अपहरण किया था। अकेले सब राजाओं को जीत करके तीन कन्याओं का अपहरण किया, अपने लिए नहीं, अपने भाइयों के लिए। स्वयं ब्रह्मचारी। हाय, इस पृथ्वी पर बल में जिसके समान तक करने वाला दूसरा कोई नहीं है, उसी को शिखंडी के हाथ से मारा गया सुनकर आज मेरी छाती क्यों नहीं फट जाती। गंगा जी कह रहे हैं जिस वीर ने परशुराम को कुरुक्षेत्र के युद्ध में अनायास ही पीड़ित कर दिया, वही शिखंडी के हाथ से मारा गया, ये कितने दुख की बात है। ऐसी बातें कहकर जब गंगा जी बहुत विलाप करने लगे, तब श्री कृष्ण उन्हें आश्वासन देते हुए कहा। अब गंगा जी से कौन बात करें? कृष्ण ही बात कर सकते हैं। तो कृष्ण बोले, समझाया, भद्रे धैर्य धारण करो, शोक ना करो, तुम्हारे पुत्र भीष्म अत्यंत उत्तम लोक में गए हैं, इसमें संशय नहीं है। ये महातेजस्वी वसु थे, वशिष्ठ जी के साप से इन्हें मनुष्य योनि में आना पड़ा था, अतः इनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। देवी, इन्होंने युद्ध में क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध किया, अर्जुन के हाथ से मारे गए, शिखंडी के हाथ से नहीं मारे गए। गंगा जी को जो है समझा रहे हैं कि शिखंडी के बाण तो वास्तव में भीष्म जी के शरीर में खरोंच भी पैदा नहीं करते थे, और भीष्म जी कहते थे ये बाण अर्जुन के शिखंडी के नहीं है जो मेरे शरीर को पीड़ित कर रहे हैं और भेदन कर रहे हैं, आर पार हो रहे हैं। शिखंडी के बाण तो उनके शरीर में घाव भी पैदा नहीं करते, खरोंच भी नहीं पैदा करते। शिखंडी को देख करके वे अपने मतलब उन्होंने धनुष मार रख दिया था, है ना, लेकिन शिखंडी कुछ भी नहीं है, शिखंडी के बाणों में कुछ भी नहीं था, है ना। तो भगवान कृष्ण ही समझा रहे हैं, गंगा जी को समझा रहे हैं, है ना। गंगा जी देवी हैं लेकिन तो भी उनको सब कुछ पता नहीं है, हाँ, और कृष्ण समझा रहे हैं उनको, बता रहे हैं। धर छत्र धर्मेण अयोध्यतरे धनंजय नहीं है तो नैस देवी शिखंडी नाम। देवी, तुम्हारे पुत्र भीष्म जब हाथ में ध्वस मार दिए रहते, उस समय साक्षात इंद्र भी उन्हें युद्ध में मार नहीं सकते थे, ये तो अपनी इच्छा से ही शरीर त्याग करके उत्तम लोक में गए हैं। देवी, संपूर्ण देवता मिलकर भी उन्हें युद्ध में मारने की शक्ति नहीं रखते थे, इसलिए तुम भीष्म जी के लिए शोक मत करो, ये तुम्हारे पुत्र भीष्म वसुओं के स्वरूप को प्राप्त हुए हैं, अतः इनके लिए चिंता रहित हो जाओ। जब भगवान श्री कृष्ण और व्यास जी ने इस प्रकार समझाया, तब श्रेष्ठ गंगा जी शोक त्याग कर अपने जल में उतर गई, तब शोक दूर हुआ गंगा जी का। शोक दूर हो गया, है ना, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद कैसी गति मिली ये भी, और शरीर में भी जो है उन्होंने कैसे युद्ध किया, पराक्रम किया, है ना, और युद्ध बंद किया तब मारे गए, तो इनके बड़े मतलब प्रशंसा की बात है, शोक करने की बात नहीं है। तो गंगा जी प्रसन्न तापूर्वक चलेंगे। इत्युक्ता सा तु कृष्णेन व्यासेन तु सरिन्वरा त्यक्त्वा शोकं महाराज स्वयंवार्येव ततारः। स्वयंवार्येव ततारः। राजन, श्री कृष्ण आदि सभी राजा गंगा जी का सत्कार करके उनकी आज्ञा लेकर वहाँ से लौट आए। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की भीष्म जी के विषय में। अब एक बार हम आए थे ना यहाँ, जब भीष्मदेव के विषय में श्लोक हमने पढ़ा था, तो उस दिन जो लीला हुई थी वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने, यहाँ पर जो है मैंने प्रवचन दिया था तो बहुत बड़ी मतलब एक आश्चर्य की घटना हुई थी। इसका नाम है भीष्मदेव के आराध्य पार्थ सारथी कृष्ण हैं। ये घटना दिनांक 30 दिसंबर 2014 की है। ये बात कई दिनों पूर्व ही निश्चित हो चुकी थी कि आज मैं द्वारका मंदिर में प्रातःकालीन प्रवचन दूंगा। पिछली रात्रि में जिस समय मैंने उस श्लोक का अध्ययन किया, जो श्लोक आज के प्रवचन के लिए मुझे यथाक्रम में प्राप्त हुआ था, उस समय उस श्लोक के तात्पर्य का अध्ययन करके मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने इस बात पर जोर दिया कि भीष्म देव के आराध्य पार्थ सारथी के रूप में श्री कृष्ण हैं और वही कृष्ण वृंदावन में गोपियों के सर्वाधिक मनोहर श्याम सुंदर हैं। ये श्री कृष्ण के द्वारा बनाए गए एक अत्यंत आश्चर्यजनक घटना योग था, क्योंकि मेरा ये नियम अनेक वर्षों से चल रहा है कि मैं प्रतिदिन राधा पार्थ सारथी मंदिर में प्रातः 4:30 बजे की मंगल आरती में भाग लेता हूँ, और आज मुझे प्रवचन देने के लिए जो श्लोक प्राप्त हुआ उसके तात्पर्य उन्हीं पार्थ सारथी की बात निकली कि जिस प्रकार मैं राधा पार्थ सारथी चरणों में आ सकती हूँ, उसी प्रकार भीष्म देव जी की भी आ सकती पार्थ सारथी कृष्ण में थी। श्री कृष्ण के द्वारा बनाए गए ऐसी अद्भुत घटनाओं को देखकर मैं तथा मैं अत्यंत विस्मित और बार बार हर्षित हुआ। अरे वो अब ये किसी ने नहीं सोचा था कि ये श्लोक मुझे मिलना है, लेकिन मिला था। फिर एक दूसरा आश्चर्य हुआ, प्रहलादनाथ प्रभु ने पार्थसारथी की प्रसादी माला मुझे दी। अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई, इष्ट कैलाश वाले श्री राधा पार्थसारथी मंदिर में मंगल आरती के कार्यक्रम में भाग लेने के पश्चात मैंने अपने कमरे में आकर जिस समय प्रद्युम्न प्रिया प्रभु को उस अद्भुत श्लोक की सूचना दी जिस पर आज मुझे द्वारका मंदिर में प्रवचन देना था, उस समय प्रद्युम्न प्रिया प्रभु तो विस्मित और हर्षित हुए, परंतु ठीक उसी समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। उस समय प्रहलादनाथ प्रभु मंदिर से पार्थ सारथी के अर्चन विग्रह की प्रसादी माला लेकर मेरे कमरे में आए, उन्होंने वो माला मेरे गले में पहना दी। अब यदि गहराई से विचार किया जाए तो अत्यंत आश्चर्य की बात है कि जिस समय मैं प्रद्युम्न प्रिया प्रभु को उस श्लोक के विषय में बतला रहा था कि जिन पार्थ सारथी के मंदिर में मैं प्रतिदिन मंगल आरती में भाग लेता हूँ, उन्हें पार्थ सारथी की विशेष चर्चा उक्त श्लोक में आई है, ठीक उसी समय प्रहलादनाथ प्रभु ने मंदिर की 4 वेदियों में स्थित कुल मिलाकर 14 अर्चा विग्रहों में से केवल पार्थ सारथी अर्चा विग्रह की ही प्रसादी माला लाकर मेरे गले में पहनाई। प्रहलादनाथ प्रभु को कुछ भी नहीं पता था कि इस समय मैं अपने कमरे में क्या चर्चा कर रहा हूँ, ये तो केवल श्री कृष्ण ही जानते थे तथा उन्होंने ही घटना का ऐसा योग बनाया था कि मैं अपने कमरे में जिस समय श्लोक के आश्चर्य की बात कर रहा था कि उसके तात्पर्य पार्थ सारथी की चर्चा हुई है, ठीक उसी समय पार्थ सारथी अर्चा विग्रह की प्रसादी माला मुझे प्राप्त हुई। श्री कृष्ण के द्वारा बनाए गए ऐसी घटना योग को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बारम्बार हर्षित हुए। फिर प्रभुपाद के संदेश में भी यही बात निकली। अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई, मेरा नियम है कि मैं प्रभुपाद कैलेंडर में से प्रतिदिन श्रील प्रभुपाद का उस दिन के लिए जो भी संदेश होता है उस संदेश को रात्रि के समय अपने संगियों को पढ़कर सुनाता हूँ। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि यदि मैं कुछ कारणवश एक दिन अथवा कुछ दिनों के लिए प्रभुपाद के उन दिनों के संदेश नहीं पढ़ सका तो उन सभी दिनों के संदेश अगले दिन की रात्रि में पढ़कर सुनाता हूँ। अब आज रात्रि के समय मैं जब श्रील प्रभुपाद का आज के दिवस का संदेश पढ़कर सुनाना चाहता था, उस समय मैंने देखा कि मैंने पिछले दिन का अर्थात दिनांक 29 दिसंबर का भी संदेश नहीं पढ़कर सुनाया था। अतः मैंने दोनों दिवसों के अर्थात 29 दिसंबर तथा 30 दिसंबर के संदेश पढ़कर सुनाए। अब जिस समय मैंने 29 दिसंबर का संदेश पढ़कर सुनाया उस समय मैं तथा मेरे संगियों को अत्यंत आश्चर्य हुआ, क्योंकि आज मैंने जिस श्लोक पर प्रवचन दिया था उसके तात्पर्य में जो बात आई थी वही बात 29 दिसंबर के संदेश में भी आई थी। उस संदेश के शब्द इस प्रकार थे, भीष्मदेव एक क्षत्रिय थे और इसलिए वे श्री कृष्ण को क्षत्रिय रूप में देखकर प्रसन्न हुए। देखो क्या आश्चर्य है। उसी प्रकार जैसे गोपियां श्री कृष्ण को सर्वाधिक सुंदर प्रेमी के रूप में देखना चाहती थीं, श्री कृष्ण से किसी भी रूप में प्रेम किया जा सकता है और चूंकि वे पूर्ण हैं अतः उनके क्षत्रिय रूप में अथवा प्रेमी के रूप में प्रेम करने में कोई अंतर नहीं है। यह तो प्रभुपाद का संदेश था या 29 दिसंबर की दिनांक का। अब तात्पर्य में जो शब्द थे उन्हें ध्यान से समझिए कि इन दोनों में कितनी समानता है। प्रभुपाद का तात्पर्य जो उस श्लोक का था, भीष्म देव के आराध्य पार्थसारथी के रूप में श्री कृष्ण है और वही श्री कृष्ण वृंदावन में गोपियों के सर्वाधिक मनोहर श्याम सुंदर है। कभी कभी अल्पज्ञ लोग भूलवश ये सोचते हैं कि वृंदावन के कृष्ण तथा कुरुक्षेत्र युद्ध वाले कृष्ण पृथक पृथक हैं, लेकिन भीष्म देव के मन से ये भ्रांति पूरी तरह दूर हो चुकी थी। अब यहां पर एक बात और समझने की है कि श्री कृष्ण की ही ऐसी व्यवस्था थी कि कुछ ऐसे कारण बने कि मैंने 29 दिसंबर का यह संदेश उस दिन नहीं पढ़ा बल्कि अगले दिन अर्थात 30 दिसंबर के दिवस पर पढ़ा, क्योंकि आज 30 दिसंबर के दिवस पर ही मैंने ऐसे श्लोक पर प्रवचन दिया था जिसके तात्पर्य में यह बात निकली थी। समझ रहे हैं, श्री कृष्ण के द्वारा बनाए गए ऐसे दिव्य घटना योग को समझ कर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। फिर है श्री प्रभुपाद के द्वारा मुझे भी प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। अब एक अन्य आश्चर्य की बात हुई, दिल्ली में जो इस्कॉन का बड़ा मंदिर है उसके अंदर श्री कृष्ण की अर्चा विग्रह का नाम है पार्थसारथी, और वृंदावन में जो इस्कॉन का बड़ा मंदिर है उसके अंदर श्री कृष्ण की अर्चा विग्रह का नाम है श्याम सुंदर। सामान्यतः ये सोचा जाता है कि वृंदावन के श्याम सुंदर सर्वाधिक पूर्ण है और कुरुक्षेत्र अथवा द्वारका के कृष्ण में भी पूर्णता है, परंतु वृंदावन के श्याम सुंदर के समान पूर्णता नहीं है, ऐसा सामान्यतया समझा जाता है। अब ये सोचने की बात है कि आज के श्लोक के तात्पर्य में तथा उक्त संदेश में भी श्रील प्रभुपाद ने इस बात पर जोर दिया है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। श्रील प्रभुपाद के इस तात्पर्य से और उक्त संदेश से मुझे इस बात में अत्यंत बल मिला कि मैं यहाँ तक कि वृंदावन के श्याम सुंदर मंदिर में भी मंगल आरती में भाग न लेकर केवल दिल्ली के पार्थसारथी मंदिर में ही मंगल आरती में भाग लेता हूँ। अन्यथा एक प्रश्न उठता है कि मेरा ऐसा नियम क्यों है कि मैं वृंदावन में भी ना ठहर कर केवल दिल्ली के पार्थसारथी मंदिर में ही मंगल आरती को महत्व देता हूँ। प्रभुपाद के द्वारा मुझे अत्यंत प्रोत्साहन मिला कि जिस प्रकार भीष्म देव का पार्थसारथी के प्रति प्रेम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण गोपियों का श्याम सुंदर के प्रति प्रेम है, उसी प्रकार मेरा दिल्ली मंदिर में पार्थसारथी की मंगल आरती में भाग लेने का जो नियम है वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण वृंदावन में श्याम सुंदर की मंगल आरती में भाग लेना है। श्री कृष्ण की कृपा से मुझे अपने नियम का पालन करने में जो प्रोत्साहन प्राप्त हुआ उस पर विचार करके मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। फिर ये अद्भुत लीला हुई, आप सुनिए ध्यान से, उसी दिन की लीला यहाँ पर हुई कि मैंने उक्त श्लोक का गोपी गीत की धुन में गान किया। सुन रहे हैं, अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के अध्याय संख्या 31 में जितने श्लोक हैं वे गोपी गीत के नाम से विख्यात हैं। ये श्लोक गोपियों के द्वारा बोले गए हैं जिस समय वे वृंदावन में रास के समय श्याम सुंदर के अंतर्धान हो जाने पर उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए तीव्र भाव से प्रार्थना करती हैं। इन श्लोकों को गाने की विधि अन्य श्लोकों को गाने की विधि से अलग है। सामान्यतया किसी भी श्लोक को जब गाया जाता है तो श्लोक को चार भागों में विभाजित करके एक एक भाग को गाया जाता है, परंतु गोपी गीत के श्लोकों को जब गाया जाता है उस समय उन चार भागों में से प्रत्येक भाग को दो आधे आधे भागों में विभाजित करके इस प्रकार संपूर्ण श्लोक को आठ भागों में विभाजित किया जाता है। फिर इन आठ भागों में से प्रत्येक भाग को अलग अलग गाया जाता है। अब समझने की बात यह है कि जिस श्लोक पर मैंने प्रवचन दिया था वो श्लोक भीष्म देव के द्वारा श्री कृष्ण के सामने उस समय बोला गया जिस समय भीष्म देव शरीर त्याग कर रहे थे, आज के दिन का था। अब दूसरी बात यह है कि इस श्लोक के तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने भीष्म देव की श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना को उतना ही महत्व दिया है जितना महत्व गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना का है। अतः श्री कृष्ण ने आज कुछ ऐसे कारण बनाए कि मुझे कक्षा के समय भीष्म देव के द्वारा बोले गए इस श्लोक को गोपी गीत की ही धुन में गाने के लिए विवश होना पड़ा। मामा मोगली नहीं थे उस दिन, है ना, तो वही कारण बन गया कि ये नहीं थे उस दिन। तो क्या हुआ, प्रत्येक मंदिर में यह नियम है कि कक्षा आरंभ होने से काफी समय पूर्व बोर्ड में यह श्लोक लिख दिया जाता है ताकि वक्ता के पीछे सभी श्रोता उस श्लोक को दोहरा सकें। अब आज जिस भक्त को श्लोक लिखने का कार्य सौंपा गया था वो भक्त श्लोक लिखना भूल गया। ऐसी स्थिति में जिस समय कक्षा प्रारंभ हुई उस समय वहां पर बैठे हुए अन्य भक्तों ने बोर्ड पर श्लोक लिखने का प्रयास किया, परंतु जिस समय श्लोक का पाठ प्रारंभ हुआ उस समय तक वे भक्तगण बोर्ड पर पूरा श्लोक नहीं लिख सके। ऐसी स्थिति में मुझे अपनी पुस्तक से श्लोक को छोटे छोटे खंडों में पाठ करना पड़ा। अब वो कारण बन गया ना कि गोपी गीत में ही वो श्लोक मैंने पढ़ा, ये कारण जो है किसने बनाया था, ऐसे कह सकते हैं भाई ये कारण है अमोघ लीला नहीं थे इसलिए भी ठीक से ये सेवा नहीं हो पाई, लेकिन सब कारणों के कारण तो कृष्ण है। तो छोटे छोटे खंडों में पाठ करना पड़ा ताकि श्रोतागण इस श्लोक के शब्दों को दोहरा सकें। इस प्रकार मैंने श्लोक को 8 खंडों में विभाजित करके इस श्लोक का गान किया और श्री कृष्ण के इच्छा से गान की ध्वनि गोपी गीत की तरह अत्यंत मधुर हो गई। हरि बोल, गोपी गीत की धुन में हुआ। इन्होंने फिर ध्यान दिया और बताया, तब मुझे समझ आया कि हाँ ये तो मतलब एक लीला हो गई, इसलिए फिर ये लिखित रूप दिया इसको। श्री कृष्ण के द्वारा किए गए ऐसे आश्चर्य को समझकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल, हरि बोल। तो आज का दिन बहुत पवित्र है, है? नहीं वो ठीक, इतने मुझे सुनाना था।
आज भीष्माष्टमी भी थी, भीष्म जी का जीवन चरित्र के साथ साथ ये भी सुनाना। भीष्माष्टमी के दिन ही प्रभु जी का लेक्चर रखा गया।
हाँ, तो आज का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और भक्तों को समझना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत पूरा अध्याय है जिस विषय में, है ना। तो आज के दिन चर्चा होनी चाहिए पूरे क्लास में भीष्माष्टमी के दिन, ठीक है ना। और कोई किसी को कुछ कहना है? धन्यवाद। आपका प्रश्न है?
जैसे आपने पढ़ा कि भगवान ने दुर्गा माता को समझाया कि वो उत्तम लोक को गए, तो दूसरी तरफ ये बताया कि वो वसु थे और वसु के रूप में चले गए। वसु तो एक काली देवता की योनि मानी जाती है।
हाँ, उत्तम लोक, देखिए इसमें कई उत्तर हैं इस बात के। पहला तो उत्तर यह है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कहीं भी रहें तो उनके लिए वैकुंठ में और इस जगत में कोई अंतर नहीं है। वे कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, उनके लिए कोई अंतर नहीं है, है ना। और 12 महाजनों में भीष्म जी का नाम है, तो ये जो भीष्म जी जो है इस भौतिक जगत के अंदर ही हैं। ये 12 महाजन इस भौतिक जगत के अंदर ही हैं जो कि प्रचार में लगे हुए हैं, प्रचार कार्य में लगे हुए हैं। स्वयंभू, नारदा, शंभू, है ना। तो वो इसी भौतिक जगत में ही है, वो उनके नाम लिए गए। आध्यात्मिक जगत में सभी महाजन हैं, है ना। तो फिर 12 महाजन क्यों? प्रभुपाद भी महाजन हैं, लेकिन 12 महाजनों में क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो चले गए, इस भौतिक जगत में कहाँ है, ठीक है ना। तो भीष्मदेव जो है भौतिक जगत में है और वो जो है शुद्ध भक्त कहीं भी रहे उसके लिए कोई अंतर नहीं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, भीष्माष्टमी महामहोत्सव की, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की, श्री श्री गौरनिताय की, श्री श्री जगन्नाथ सुभद्र बलदेव की जय।
जय सीता मित्र जी की।
मिल गया साक्षात सामने से जो भी ये नहीं कह सकते। हाँ।